Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पहले के समय ऐसा हुआ करता था जब हम छोटे थे कि जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थीं तो हम अपनी दादी के पास या नानी के पास चले जाया करते थे। संभवतः अब भी ऐसा होता होगा कि गर्मियों की छुट्टी में बच्चे अपने ननिहाल में चले जाते होंगे। वहां जाके अपनी दादी से या नानी से हम किससे कहानी सुना करते थे, नानी जी के पास ही घुस जाया करते थे। उनकी खाट में हमारे सारे ही जो भी मौसी के बच्चे हुआ करते थे और भी जो भी हमारे चचेरे मेरे भाई थे सभी, तो नानी जी कहानी सुनाया करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। एक बार चूंकि हम एग्जाम दे के वहाँ गए हुए थे, शायद मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में रहा होगा, तो नानी जी ने पूछ लिया हम लोगों से रात में ही कहानी सुनाने से पहले कि तुम सबकी परीक्षा कैसी रही। हम सब ने कहा बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कोई नकल तो नहीं मारता तुम में से, तो हमने कहा अब तक इसकी नौबत तो नहीं आई है कि हम लोग नकल मारें और वैसे हम सब पढ़ाई में अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि नकल कभी मारना भी नहीं, ये बहुत ही बुरी आदत है। और उन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग कहानी के रूप में हम सबको सुनाया कि जब महात्मा गांधी जी छोटे थे, अपना एग्जाम लिख रहे थे, तो कोई प्रश्न उनसे संभल नहीं रहा था, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो। उनके एक टीचर आए, उन्होंने देखा कि ये मोहनदास ये काम नहीं कर पा रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। उन्होंने इशारा किया कि इसका आंसर ये है, लेकिन मोहनदास ने अर्थात गांधी जी ने वो आंसर नहीं लिखा। और इसलिए नहीं लिखा, उनकी आत्मकथा में शायद ये बात आती है कि वो मेहनत उन्होंने जितनी की थी उतना ही वो फल चाहते थे, उससे ज़्यादा नहीं चाहते थे या नकल नहीं करना चाहते थे या इस प्रकार की जो चीज़ें थी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ये बात नानी जी ने सुनाई और इस बात ने बहुत ही गहरा असर डाला कि सचमुच अपने मेहनत से ही हमें सब कुछ प्राप्त करना है, नकल नहीं करना है, क्योंकि नकल करेंगे तो वो चीज़ हमेशा जीवन में काम नहीं आएगी और शायद एक बुरी आदत भी पड़ जाएगी कि हम गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे। और जब मैं टेंथ में था, बोर्ड में था, तो ठीक यही सिचुएशन आई कि एक प्रश्न मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। हमारे टीचर वहाँ से गुजर रहे थे, वो राउंड ले रहे थे, उन्होंने देखा कि इससे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, उन्होंने भी ठीक वैसा ही इशारा किया, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, उनको लगा कि शायद ये बना ले, बोर्ड का एग्ज़ाम है तो इसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैंने मुस्कुरा के धन्यवाद तो किया, लेकिन शायद बचपन में जो बात नानी जी ने सुनाई थी, महात्मा गांधी जी के जीवन का जो प्रसंग सुनाया था, वो बात बहुत गहराई से जेहन में थी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही हम प्राप्त करें, गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करें। मैंने सर का धन्यवाद तो मुस्कुरा के दे दिया, लेकिन उसका आंसर मैंने नहीं लिखा जबकि सर बता गए थे। तो मित्रों, ये प्रसंग मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ कि बचपन में जो चीज़ें हमारे बड़े हमें सिखा देते हैं कहानियों के माध्यम से, सचमुच बहुत गहराई से वो अंतर मन में चले जाते हैं। यही कारण है कि हमारी दादी जी या नानी जी या बड़े बुजुर्ग हमें कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण किया करते थे और वो समाज को बेहतर और श्रेष्ठ बनाने में सचमुच बहुत ज़्यादा योगदान दिया करते थे। और यही कारण है कि मैं भी कहानियों से ही शुरुआत किया करता हूँ कि कम से कम कुछ अच्छी बातों से हम समाधान की शुरुआत करें। ऐसे सुंदर बात के साथ, प्रेरक प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आदरणीय ब्राता जी का। ब्राता जी बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया
ब्राता जी। ये कहानियाँ वैसे जो हम सुनते हैं बचपन में बच्चों को सुनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं और हमारे जीवन का निर्माण करती हैं।
आजकल क्या है कि 10 साल से ही कल्चर बदल चुकी है
जी।
अब बच्चे, मुझे नहीं लगता वो नानी के पास जाते होंगे, वो तो टीवी के पास जाते हैं आजकल वो तो मोबाइल से चिपके रहते हैं आजकल। तो जो एक सोशलाइजेशन था ना
जी,
मिलना जुलना, सीखना सिखाना, वो बहुत कम होता जाता है और इसका दुष्परिणाम सबके ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए बचना चाहिए। और आप जो बात कह रहे थे, मुझे याद आ रहा था, आज ही मुझे किसी ने घटना सुनाई, मेरे ऊपर वो छाई हुई रही अब तक। क्या थी कि किसी एक व्यक्ति को दो बच्चे, किसान, ये छोटे ने बड़े को मार डाला, छोटा जेल में। मैंने पूछा क्यों मार दिया, तो कहा किसी ने उसको सिखा दिया, इसे मार दो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। मैं सोच रहा था और हम चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए, किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के अगर बहुत कुछ मिल जाता है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता
जी।
और आजकल बहुतों की ये एक मेंटेलिटी हो गई है कि करो कुछ नहीं, करोड़ों की संपत्ति मिल जाए फिर मौज करो। इससे क्या है, लोगों का जीवन बेकार हो जाता है, वो ठंडे हो जाते हैं, वो गलत राह पे चलते हैं, मानसिक स्थिति बिगड़ती है। तो देखिए कितनी बुरी बात थी कि एक प्रॉपर्टी लेने के लिए उसने अपने बड़े भाई को मारा, फिर वो खुद जेल में। कैसा परिणाम हुआ, माँ बाप पर क्या बीती होगी सोचने की बात है। दोनों ही गए, युवक वो भी
जी जी।
तो मनुष्य को सचमुच मेहनत से सब कुछ बनाना चाहिए। मेहनत की कमाई मनुष्य को योग्य भी बनाती है, उसके टैलेंट्स बहुत इससे बढ़ जाते हैं और उसको उस कमाई की वैल्यू भी बहुत होती है। तो मैं तो सभी युवकों को कहना चाहूंगा, मेहनत करो, मेहनत से जो आपको मिलेगा बहुत सुखद फीलिंग होगी। मान लो एक युवक है और बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको 10,000 रुपए मिले सैलरी लेकर, वो 10,000 लेकर जब घर आ रहा है तो उसकी मेंटेलिटी कुछ और होगी। उसके बाद जो सुखद फीलिंग होगी वो एक्चुअली बहुत अनुपम होगी। ऐसे ही किसी को दे दिया जाए तो ऐसे ही चला भी जाता है
जी, जी।
इसलिए मनुष्य को सदा अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई से जीवन को सुखी और सफल करना चाहिए।
बिल्कुल, बात जब युवावस्था में व्यक्ति आता है प्रताप जी, जब भी हमारे यंगस्टर्स हैं, बाहरी माहौल का बहुत ज्यादा असर, जैसे आपने कहा कि छोटे को किसी ने कुछ कह दिया, सिखा दिया होगा कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, बस रास्ते से हटा दो, तो आपको ऐसा नहीं लगता प्रताप जी, जैसे बचपन की मैंने बात कही, बचपन में जो संस्कार, जो बातें बहुत दृढ़ता से अंदर भर दी गई होती हैं, तो वो चीज हमें गलत करने से रोकती है। संभवतः एक स्थिति मेरे पास भी थी कि आसानी से मैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व करके 10 नंबर ले सकता था, लेकिन उस संस्कार ने रोक दिया कि नहीं ये गलत है। तो यदि बचपन में जब हम 3, 4, 5, 6, 7 साल के हैं, ऐसे किस्से कहानियों के द्वारा, प्रेरक प्रसंगों के द्वारा समय देकर बड़े ऐसे संस्कार डाल दें, शायद ऐसी स्थिति आए ही ना।
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन समय बदल चुका है। आजकल बच्चे हमारे पास तो आते हैं, माताएं अपने बच्चों को लाती हैं, बचपन में वो कुछ सीखने को तैयार नहीं है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ओवर एक्टिव, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर इंटेलेक्चुअल अपने को समझते हैं। तो ये स्थिति वास्तव में बहुत ही विकृत स्थिति, में इसे कहूंगा विकराल तो है पर बड़ी विकृत भी है, लेकिन ये सत्य है कि बचपन से अगर अच्छी चीजें सिखाई जाए तो कुछ बच्चे तो अवश्य सीखेंगे। आज भी स्कूलों में हम जाते हैं, बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं और हम पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे सीखने के लिए तत्पर हैं। उनके चेहरों से पता चलता है वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, उनके चेहरों के हाव भाव क्या हैं, आंखों से क्या दिख रहा है पता चलता है, ये कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, इन्हें सिखाने वाले चाहिए। तो दादियां, नानी, बुजुर्ग लोग इस बात पे ध्यान दें पुनः। ऐसे नहीं वो भी टीवी में बिजी हो गए कि भाई टाइम पास नहीं हो रहा, हम तो बूढ़े हो गए, सारे दिन टीवी देख रहे, बच्चे बच्चे आए भगा दिया 2-4 बार, अरे भागो क्या सोने नहीं दे रहे, तो अभी इसको ठीक करना है और बच्चों को।
वही कुछ दिन पहले मैं वही आपसे कह रहा था प्रताप जी, कि किसी ने शेयर किया था कि वो अपने बेटी और दामाद के यहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने वो प्रश्न हमें भेजा था कि बेटी अपने में बिजी, अपने गैजेट्स में, और जो दामाद है वो अपने में बिजी, और इस बेचारे छोटू को वो लोग टीवी के सामने बिठा देते हैं कि तू कार्टून देखता रहे, हम लोग अपना काम करेंगे। तो शायद सभी अपने अपने में ऐसे लग गए हैं कि ये जो संस्कार देने का वक्त है, शायद उस समय को हम बिल्कुल जैसे दूसरे कार्यों में लगा रहे हैं।
अब देखिए वो अपना स्वार्थ तो उन्होंने देख लिया, हमें काम करना, बच्चा करने नहीं देगा, इसको टीवी के आगे बैठा दो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके भावी जीवन पर इसका क्या बुरा असर होगा। उसको माँ का प्यार चाहिए, माँ से अनेक चीजें वो सीख सकता है। अब टीवी में कार्टून देखेगा, फिर और कुछ देखने लगेगा और वो निगेटिव हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल बिगड़ सकता है। जो बुद्धिमान माँ बाप हैं उन्हें बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वो ये ना सोचे कि हमें ये करना वो करना, बच्चे करने नहीं दे रहे, चलो इन्हें ये कर दो। नहीं, माँ बाप इसको भी अपना परम कर्तव्य समझे, इसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, कि इम्पोर्टेंट काम समझ लें। बच्चों को पालना करनी है, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखानी है, और ये भी आजकल के युवा जो माँ बाप हैं उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ से क्या सीखेंगे। बच्चे भले ही 5 साल तक के हैं, जिन्हें अभी अपना कुछ पता नहीं है, माँ बाप जो उन्हें दिखा देते हैं वो उसमें लग जाते हैं, तो माँ बाप को बहुत समझदारी पूर्वक अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सुंदर उनका फ्यूचर हो ऐसी चीजें उन्हें देनी चाहिए, चीजें सिखानी चाहिए जिनसे उनका कल्याण हो जाए। केवल हम बहुत बिजी हैं इसलिए बच्चों को इस तरह के कार्यों में लगा देना, फिर क्या होगा, बच्चे बड़े होकर माँ बाप को परेशान करेंगे।
एक मैं सर्वे देख रहा था प्रताप जी, और न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि ठीक है ये जो गैजेट्स हैं अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है बच्चों को, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है ये उन्हें पता नहीं चलता है। और ये कार्य जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो किस्से कहानियों की बात आ रही थी कि बच्चे जब कहानी सुनाया करती थी दादी या नानी तो प्रश्न किया करते थे, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, और वो अपने अनुभव से उन्हें सिखाते थे कि ये करना चाहिए ये नहीं करना, तो ये कमी रह जाती है इन गैजेट्स के साथ। इसीलिए शायद ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स या दादी नानी इस बात का ध्यान रखें,
क्योंकि जो उसमें लोड करने वाले हैं, जो उसमें डालने वाले हैं नेट पे, वो सब न जाने कैसे कैसे लोग हैं
जी।
कोई बहुत गंदे भी हो सकते हैं जो अपने गंदे विचार उसमें लोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, पढ़ेंगे लोग सोचेंगे अरे नेट पे आ रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा
जी।
उसे फॉलो कर लेते हैं, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिमिनेशन होना ही चाहिए और ये बड़ों का काम है, नहीं तो टू मैनी इन्फॉर्मेशन जो है इट इज स्पॉइलिंग देयर ब्रेन, बहुत नुकसान कर रही है, और बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, जो कुछ उन्हें मिल रहा है वो पढ़ रहे हैं, और बच्चे हैं तो यही सोच रहे हैं कि सब कुछ राइट है।
जी 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 प्रताप जी, एक इंडियन साइको सोशियो फाउंडेशन है जिसने बच्चों पे रिसर्च किया था, 4 महीने तक उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि जिन बच्चों को ऐसी प्रेरक कहानियां सुनाई जाती हैं बड़ों के द्वारा, उनके अंदर बहुत उनकी रचनात्मकता बढ़ती जाती है, वो तनाव से मुक्त हो जाते हैं, उनके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वैल्यूज हैं वो बढ़ने लगती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने पाया कि बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, उनके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक बहुत सुंदर सा रिसर्च आया है जिसके माध्यम से लगता है कि सभी बच्चों को सचमुच बड़ों का ऐसा सानिध्य कहानियों के माध्यम से जरूर मिलना ही चाहिए।
इसका कारण ये है कि जो बच्चे अच्छी चीज सीख रहे हैं उनका मन बहुत अच्छा रहता है
जी जी,
पॉजिटिव रहेगा, वो जैसे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं या कई इरिटेट रहते हैं या कई बहुत एंग्री हो जाते हैं, इन सब चीजों से फिर बच्चे बचे रहेंगे। और बच्चों को क्या आजकल संघ का बहुत बुरा इफेक्ट है, मान लो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, अब हॉस्टल में साथी कैसे हैं, वो देवता तो है नहीं, न जाने क्या सीख रहे हैं बच्चे हॉस्टल, पहले हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी मानी जाती थी
गुरुकुल की,
हाँ एकदम कि भाई वहाँ बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे, आज वो चीज नहीं है हॉस्टल्स में। तो इसमें क्या होता है कि मन जब अच्छी स्थिति में है तो बुद्धि की जो एफिशिएंसी है, बुद्धि की जो कार्य शक्ति है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि में क्रिएटिव पावर है ही, हर मनुष्य की बुद्धि में बहुत कुछ क्रिएट करने की क्षमता होती है, लेकिन मन के विचलित हो जाने से वो बौद्धिक शक्ति नष्ट होने लगती है, उस और मनुष्य का ध्यान भी नहीं जाता कि तुम्हारे पास ये क्रिएटिव पावर है। इसलिए ये बिल्कुल सत्य रिसर्च हुई कि जिन बच्चों ने अच्छा अच्छा सीखा उनकी क्रिएटिव पावर भी बहुत ज्यादा थी, उनका पूरा जीवन ही अच्छा रहेगा,
बिल्कुल मूल्य से परिपूर्ण हो जाता है बिल्कुल। और बड़ों के द्वारा जब ये चीजें आती हैं तो चीजें और बहुत सहज हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बताइए जी ये देखने में आया है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा युक्त प्रश्न होते हैं, जब कोई बड़ा उन्हें सही सही एक प्रकार से निर्देश देता है चाहे वो अच्छाइयों की बुराइयों की, तो सहज रूप से उनके जीवन में आती चली जाती है। और रिसर्च में ये भी एक अच्छी चीज थी बताइए कि उनके अंदर धैर्य बढ़ता जाता है और साथ ही साथ उनकी सुनने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, जो आजकल के यूथ में नहीं होती है।
दोनों ही चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धैर्य चित्त जब मनुष्य है तो फिर वही बात है, उसका ब्रेन बहुत एफिशिएंट हो जाता है, ब्रेन की शक्तियां बढ़ने लगती हैं धैर्य चित्त होने से। और जो व्यक्ति बहुत उतावला है उसके मन में इतने विचार चलते हैं कि उसकी ब्रेन की शक्ति उन विचारों को मैनेज करने में ही खर्च हो जाती है, और जो क्रिएटिव काम उसे करने उसके लिए बचती नहीं। और रही बात सुनने की, ये तो बहुत बड़ी मैच्योरिटी है, कई बड़े लोगों में भी ये शक्ति नहीं पाई जाती, वो सुनते नहीं सुनाते ज्यादा है, कोई सुनाए तो रोक देते हैं, लेकिन घरों में भी जो व्यक्ति सुन ले उस घर में शांति हो जाएगी, जो व्यक्ति सुन ले उसके डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी एकता हो जाएगी, एक व्यक्ति ऑफिसर बन गया और वो किसी की सुनता नहीं है तो बिल्कुल वो टेंशन में रहेगा, कोई उसकी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों की नहीं सुनते तो हमारी भी दूसरे फिर नहीं सुनते, वो इग्नोर करने ही लगेंगे हमारी बातों को। इसलिए बच्चे अगर ये दो चीजें सीखते हैं तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, सुनना भी और धैर्यवत।
और साथ ही व्यक्तित्व का विकास भी रहता जी बहुत ज्यादा इसमें पाया गया। मान लीजिए बच्चे में भय है और आप उसके भय को निकालने के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं, कोई कहानी गढ़ते हैं, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं, भय करना ठीक नहीं है, आत्मविश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी तरह से कहानियों के माध्यम से।
चलो हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि पुनः हमारे देश में ये महान संस्कृति काम करने लगे।
बता जी, रुचि की जहां तक आप बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चों में रुचि नहीं है, तो ऐसी उनकी मनोविज्ञान को समझ के, उनकी रुचि को समझ के भी तो कुछ ऐसी कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, अच्छे प्रसंग गढ़े जा सकते हैं और संसार में ऐसे प्रसंग होंगे भी।
लेकिन कोई उन्हें इस चीज, इस तरह की चीजें देने वाला नहीं है ना, तो उनकी रुचि की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। रुचि है, मैंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं। अभी मेरे पास ग्रुप बैठा था, 6 बच्चे थे उसमें, तो कहा कि मैंने कहा बच्चे क्लास में बैठे, तो कहा नहीं, बच्चों की क्लास ही अलग होती थी, पर ये हमारे 2 बच्चे हमारे साथ ज्ञान सुनते थे क्योंकि ये योग बहुत अच्छा लगाते हैं और ये डेली क्लास में जाते हैं महावाक्य सुनने के लिए। तो मैं देखा एक तो बिल्कुल छोटा केजी में, कहा यही हमें ज्ञान मिलाया है, इसका इतना अच्छा योग में बैठना, और जो 2 थे बाकी भी, कहा ये हमसे भी अच्छा ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, इन सब चीजों से हम समझते हैं कि बच्चों को हम केवल उस रूप से न देखें कि ये टीवी देखने में रुचि लेंगे, ये कार्टून ही देखेंगे, इनको अगर अच्छी चीजें सिखाई जाएं तो भले वो भी देखें, ये हम नहीं कहते कि उन्हें बिल्कुल कार्टून न देखने दिया जाए, देखें, लेकिन जब अच्छी बातें उन्हें सिखाएंगे तो वो भी उनके अंतर्मन में समाती रहे।
खास रात को सोते समय कहानियां सुनाई जाया करती थी, तो ये बात मेरी ध्यान में है, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो शायद उस समय जो कहानियां सुनाई जाती थी, अच्छी बातें सुनाई जाती थी, इसके पीछे भी शायद यही साइंस
था। बल्कि कहानी सुनते सुनते बच्चे सो ही जाते थे, हम लोगों को भी अनुभव है, रोज का धंधा था ये। और अगर कहानी न सुनाए, हमारी बुआ होती थी, कहानी न सुनाए तो हम उसके पीछे लग जाते थे, बात सुनाओ आज, इसको बात कहते हैं उधर की भाषा में, सुनाओ आज, तो वो सुनाते थे और हम सुनते सुनते सो जाते थे। तो वही अच्छी बातें सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण कर लेता है कि वो एक्टिव हो गया, और सचमुच इसका जीवन पर बहुत
अच्छा असर पड़ता है। कई बार ये होता है प्रताप जी, आजकल एक कल्चर सा बन गया है, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि रात को हम कुछ टीवी सीरियल या और चीजें ये वो देखते हुए सोते हैं और उसी स्थिति में सो जाते हैं, तो शायद हमारी नींद भी फ्रेश नहीं होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, और सुबह यदि हम उठना चाहते होंगे तो भी नहीं उठ पाते होंगे। तो रात का समय जो है, कम से कम कितना समय अपने आप को देना चाहिए शांति में, ध्यान करते हुए सोना चाहिए ताकि रात की नींद अच्छी हो।
बिल्कुल, ये सत्य है कि बहुत लोग टीवी देखते हुए सोते हैं और वो सोचते हैं सारा दिन तो हम बहुत बिजी थे
जी,
और रात को ही हमारे पास समय मिला है, हम तो बिजनेस से ही देर से आए हैं, माता जी ने काम काज ही 10:30 बजे तक किया है, तो अब टीवी देखेंगे और सो जाएंगे। अब मान लो कोई ऐसा सीन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अशोक का सीरियल चल रहा है, अभी अशोक तो बहुत महान सम्राट हुआ है, लेकिन सीरियल में तो वो महानताएं बचपन से नहीं है ना, तो मान लो सीरियल में दिखाया जा रहा है कि अशोक को बहुत परेशान किया जा रहा है, तो देखिए सुनने वाले के मन पर एक बुरी छाप पड़ी कि जो महान लोग हुए उनको लोगों ने बड़ा परेशान किया है, तो खिन्न भाव से वो बिस्तर पर गए
जी।
तो एक सटिल पीसलेसनेस सबकॉन्शियस माइंड ने रिसीव कर ली, इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, विचारों पर भी पड़ेगा कि जो अच्छे लोग होंगे उनको बड़ा तंग करेंगे लोग। लेकिन इसको ही अगर पॉजिटिवली ले लिया जाए, अब ये हर एक के चिंतन की बात है कि जो महान बने हैं उन्हें कष्ट बहुत मिला है, लेकिन वो कष्टों से रुके नहीं, कष्टों ने उन्हें बलवान बना दिया, अनुभवी बना दिया, ये चीज भी ली जा सकती है। पर ये सीरियल वाले तो नहीं दिखाएंगे ना, ये हर एक का चिंतन होगा। इसलिए मैं कहूंगा सोते हुए ये चीजें न देखें, कम से कम आधा घंटा पहले ये सब चीजें बंद करके अपनी तैयारी करनी चाहिए अच्छी, ताकि कोई भी विचार सीरियल का, टीवी का, या पूरे दिन की घटी घटनाओं का हमारे मानस पटल पर अंकित न रह गया हो, उसे हमें उतारना है। बहुत अच्छी बात तो ये कि जब हम सोएं तो बिल्कुल फ्रेश होकर सोएं, पुराने विचार, पुरानी दृष्टि, पुरानी कहानियां, पुराना इफेक्ट बिल्कुल हमारे मानस पटल पे छाया हुआ ना हो। इसलिए मैंने आधा घंटा कहा, 15 मिनट भी काफी है। इसलिए शिव बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी विधि बताई कि सोने से पहले अच्छा योग अभ्यास करो, और बाबा के सामने बैठकर उसे सब कुछ सुना दो। कोई बात मन को भारी कर रही है, आपसे कोई गलती हो गई है, कोई और चीज जो आपको परेशान करती है, वो सब सुना के हल्के हो जाओ, प्रभु मिलन करके फिर विश्रामी हो जाओ। तो इससे सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि फिर जग गया है सोते समय, नींद बहुत अच्छी होगी, जीवन पर इसका गहरा इफेक्ट होगा। मैंने भी देखा अर्ली ईयर्स में, बाबा ने एक बार ऐसे ही मुरली में कह दिया था कि सोने से पहले आधा घंटा योग अवश्य करना चाहिए, तो मैंने एक घंटा किया और 16 साल किया, 10 से 11 रात को। हमारे कमरे में हम 5 लोग इकट्ठे रहते थे, मैं छत पे, छत लंबी चौड़ी, घूमते हुए बहुत अच्छा योग अभ्यास। उसका इफेक्ट सचमुच जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है। फिर मुझे देख के 2 और आए, 4 आए, और 6 मास में ऐसा समय हो गया कि रात को सारी छत ही लोगों से भरी रहती थी, घूमते रहते थे, फिर सोते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट, तो इससे कम नहीं, अपने को फ्रेश करें, योग युक्त करें, प्रभु मिलन करें, फिर सोएं।
बिल्कुल, मतलब सभी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि जीवन का निर्माण भी यहीं से होता है। कि बचपन में तो चलिए बच्चों को हम कहानी सुना देते हैं, लेकिन अपने भी अभी जीवन के निर्माण में ये बहुत योगदान करेगा। प्रदीप जी, जैसे बच्चों की हमने बात कही, वैसे क्या स्कूल में भी? क्योंकि डॉक्टर कलाम को एक बार मैं सुन रहा था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बचपन में स्कूल में हमारे टीचर जो ऐसी कहानियां हमें सुनाते थे, अच्छी कहानियां, प्रेरक कहानियां, वो अब तक मुझे भी याद हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। तो क्या सिलेबस में भी ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जिसमें सांस्कृतिक धरोहर की बातें हों?
होनी चाहिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, और हमारे टीचर कबीर के दोहों की व्याख्या बहुत अच्छे करते थे, कबीर के, रहीम के, कुछ तुलसीदास के आते थे, मीरा के आते थे, तो उन चीजों की गहरी छाप हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ी। ये मुझे इसलिए कबीर के दोहे बहुत प्रिय लगते थे। हमारे एक टीचर ही थे हिंदी के, बहुत अच्छी व्याख्या करते थे, वो व्याख्या करते करते स्वयं भी मग्न हो जाया करते थे, जैसे उसमें तल्लीन हो जाते थे। तो और जो क्लास थी, डीप साइलेंस, देखिए बच्चे मुझे याद है 9th क्लास की बात होगी, डीप साइलेंस होती थी। तो अच्छी बातें सबको अच्छा बनाती हैं। अगर स्कूलों में, मैं तो कहूँगा कॉलेजों में भी अच्छी कहानियाँ, नैतिक चीज़ें, ये दोहे, और भी सूरदास ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, सूर सागर लिखा हुआ है, केवल वो हिंदी साहित्य में नहीं, मैं तो ये कहूँगा और जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा, वीक में एक पीरियड ही सही, इन चीज़ों का लिया जाए, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें और गहरी छाप अच्छाई की उनके जीवन पर पड़े।
जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। कहानियों पे, किससे कहानियों पे भी बहुत सुंदर प्रकाश आज आपसे मिला है, और आपकी बुआ जो कहानी सुनाया करती थी वो भी जरूर कभी आपसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो भी बहुत प्रेरक रही होगी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच किससे कहानियों की बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे जीवन में, और आज के दौर में जब हम देखते हैं तो जीवन में जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं कारण उसका ये रहता है कि बचपन में उस प्रकार के गहरे संस्कार हमारे अंदर, जो अच्छे संस्कार हैं, वो नहीं डाले गए। जैसे व्रता जी कह रहे थे कि छोटे भाई ने ही बड़े भाई की हत्या कर दी, वो लोभ वृत्ति कहाँ से पैदा हुई? यदि बचपन में ये बात भर दी गई होती कि नहीं, तुम्हें अनासक्त रहना है, जो भी चीज़ें हैं संतोष रखना है, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, कम से कम अपनों के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिसके कारण कभी भी समाज तुम्हें माफ ना करे, तो शायद बचपन में हमारी दादी नानी, तो चलो हम ननिहाल में जाएं तो वो हमें सुनाएंगे, या दादी के पास जाएं तो सुनाएंगे, लेकिन कम से कम अपने छोटे बच्चों को आप रात को सोते समय वक्त जरूर दीजिए, उन्हें प्यार से ऐसे प्रेरक प्रसंग, ऐसी कहानियां अवश्य सुनाएं जो उनके जीवन का निर्माण हो, उनके अंदर मूल्यों का सिंचन हो, हमारी जो संस्कृति रही है, जो विरासत है हमारे पास हमारे पूर्वजों की, वो उन्हें दें, ताकि उनके जीवन का भी निर्माण हो, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो। और मुझे लगता है यदि इस पे ध्यान दिया जाए, सिलेबस में जब आए तब आए, लेकिन घर में अपने बच्चों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। इस पे विचार कीजिएगा, और साथ ही अपने बच्चों को वक्त देते हुए उन्हीं भी कहानियों के माध्यम से उनके जीवन में मूल्यों का सिंचन जरूर कीजिएगा। अच्छी अच्छी कहानियां आपके पास भी होंगी, मैं तो हमेशा कहता हूं आप अपने अनुभवों के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें समाधान के मंच तक अवश्य पहुंचाया करें, जिन्हें हम मिल बैठ करके बांटेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः समाधान कार्यक्रम में इसी समय आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।